आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और मैं जर्नलिज्म और एमए हिंदी की छात्रा रह चुकी हूँ। बच्चों, कल हमने पढ़ी थी प्रेमचंद की कहानी सुभागी, जिसमें तुलसी महतो जी के दो बच्चे थे, एक रामू और एक सुभागी। रामू जो कि उजड और आवारा किस्म का लड़का था और सुभागी बहुत ही समझदार और कामकाज में निपुण लड़की थी। दोनों की शादी हो गई, लेकिन कुछ समय बाद जो सुभागी थी वो विधवा हो गई और उसके घर पे रहने के कारण अक्सर तुलसी और उनका बेटा था उसमें झगड़ा हो जाता था। इस कारण उन दोनों ने बंटवारा कर लिया और सुभागी अपने माता पिता के साथ रहने लगी और रामू अलग रहने लगा। अब कुछ दिनों बाद जो तुलसी महतो थे उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। सुभागी जब अपने भाई रामू को बुलाने गई तो उसने यह जवाब देके उसे भेज दिया कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, सुख में उनके साथ रही, दुख में मुझे याद कर लिया। तो वो सुभागी जो है वो गांव के मुखिया सज्जन सिंह को बुलाने जाती है और सज्जन सिंह उन्हें देखने आते हैं। तो तुलसी महतो कहते हैं कि सुभागी का ध्यान आप ही रखिएगा, ये हमने अभी तक पढ़ा था, अब मैं आपको आगे की कहानी समझाती हूँ। सज्जन सिंह ने कहा, सुभागी को तो मैंने अपने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा, तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। जब सज्जन सिंह ने देखा कि महतो की मृत्यु का समय करीब आ रहा है, उन्होंने कहा कि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो अभी बता दें। इस पर महतो ने जवाब दिया, अब कुछ नहीं कहना, बस भगवान आपको सुखी रखे, आपको खुश रखे। सज्जन सिंह ने कहा, मैं आपके बेटे रामू को बुला देता हूँ ताकि उसकी गलतियों को आप माफ कर सके, लेकिन महतो ने उसका मुंह देखने से मना कर दिया कि मैं उस पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। गोदान यानी गाय का दान। ऐसी हमारे जो ग्रामीण समाज में ये परंपरा है कि मृत्यु से पहले आपको गाय दान कर देनी चाहिए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वरना मृत्यु के बाद आपको बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए महतो के लिए भी गोदान की तैयारी यानी गाय दान करने की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार ना किया वह ना मेरा पिता है ना मैं उसका बेटा हूँ। गांव वालों ने समझाया कि अपने पिता का जो अंत्येष्टि यानी जो अंतिम संस्कार जो होता है हिंदू संस्कृति में, किसी के मरने के बाद जो उसे जलाया जाता है वो सब, क्योंकि वो बेटा करता है, इसलिए सबने रामू से करने को कहा, पर रामू ने मना कर दिया कि जब मेरे पिताजी ने मेरा मुंह नहीं देखा तो ऐसे इंसान को मैं अपना पिता नहीं मान सकता, मैं उनका बेटा भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका अंतिम संस्कार जो है नहीं करूंगा। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। कहीं ना कहीं से सुभागी ने थोड़े बहुत रुपए अपने जोड़ रखे थे और उन्हीं से उसने अपने पिता का जो दाह संस्कार अंतिम संस्कार किया और 13वीं के लिए सामान जुटाने लगी। 13वीं वाले दिन जो मृत्यु के पश्चात 13वें दिन भोज खिलाया जाता है, सबको भोजन ग्रहण करवाया जाता है, वही उसी दिन जब सब लोगों ने देखा कि इतना अच्छा भोज हो रहा है, इतने अच्छे से सुभागी ने सारी व्यवस्था कर रखी है, तो चारों तरफ वाहवाही मच गई, यानी चारों तरफ सुभागी की तारीफ होने लगी। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई, केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, यह सब काम सवेरे कर लेना। क्या कहा सज्जन सिंह ने कि अब बेटा सब लोग सो गए हैं थक के, तुम भी अभी तक काम कर रही हो, अभी आप सो जाओ। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सुभागी ने सज्जन सिंह से पूछा कि मैं थकी नहीं हूँ, मैं अभी और काम करूंगी, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आपने हिसाब कर लिया हो, जोड़ लिया हो यानी हिसाब कर लिया हो, तो कितना खर्चा हुआ यह सब मुझे बता दीजिए। सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यू ही पूछ रही हूँ। सज्जन सिंह, कोई 3000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। जो सुभागी की माँ थी लक्ष्मी, वो अपने पति की मृत्यु के बाद कुछ भी उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पूरे टाइम दुख में रहती थी। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर निवाला गले से नीचे ना उतरता। जब उसकी बेटी सुभागी उससे बहुत मिन्नत करती कि माँ कुछ खा लो, तो वो उसके कहने पर चौके में नहीं रसोई में किचन में जाती थी, लेकिन वो निवाला गले से नहीं उतरता, यानी उससे कुछ भी खाया नहीं जाता था। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। 50 वर्ष तक वो और उसके पति साथ थे, और जैसे कि हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा है कि पहले पति खाएगा और फिर पत्नी खाएगी, वैसे ही लक्ष्मी भी करती थी। तो अब उसे लगता था कि जब मेरा पति नहीं खा रहा तो मैं कैसे खा लूं, इस कारण दुख में वो घुले जा रही थी और खाना खाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे, ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिले जान से काम करने की जरूरत थी, यहाँ माँ बीमार पड़ गई। सुभागी बहुत परेशान थी क्योंकि इतने दुख में जब उसकी माँ थी तो उसको बीमारी ने भी पकड़ लिया, बीमार रहने लगी, खाट पकड़ ली यानी चारपाई पर आ गई। तो सुभागी सोचने लगी अब क्या करूं, मुझे तो और मेहनत करनी थी क्योंकि मुझे सज्जन सिंह के रुपए वापस लौटाने थे, लेकिन अब तो माँ भी बीमार पड़ गई। अब माँ बीमार पड़ गई तो वो माँ की सेवा करे या फिर काम करने जाए, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही बुखार हुआ था, जैसा बुखार तुलसी महतो हुआ था वैसे ही उनकी पत्नी लक्ष्मी को भी हुआ। तो सुभागी समझने लगी माँ का अंतिम समय यानी माँ का मृत्यु का समय भी अब आ गया है। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता, सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन भी वह संसार से विदा ले गई। उसने अपने अंतिम समय में सुभागी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। जाते जाते ये बुखार जो था वो 15 दिन तक घेरे रहा लक्ष्मी को, और उसके बाद लक्ष्मी की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी ने जाते जाते अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया कि सबको तुम्हारी जैसी बेटी मिले, मैं धन्य हो गई जो मुझे तुम प्राप्त हुई, और अगले जन्म में भी मैं तुम्हें ही अपने संतान के रूप में पाना चाहूंगी। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। जैसे अब माता भी चली गई, पिता भी चले गए, तो अब क्या था सुभागी का जीवन का लक्ष्य कि जो इन्होंने खर्चा किया है, जो मेरी सहायता करी है, वो रुपए मैंने वापस लौटा दूं। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा देते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती, इसमें कभी नागाना पड़ता। क्या हुआ, वो इतना काम कर रही थी रात को रात और दिन को दिन, यानी रात दिन बराबर काम कर रही थी, उसकी कार्य शक्ति यानी कार्य करने की जो शक्ति थी इतनी बढ़ गई थी कि लोग दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना, ये एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाते थे यानी बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि कोई इतना हिम्मत से काम कैसे कर सकता है। खेतीबाड़ी का काम करती दिन में और रात को आटा पीसती, ऐसे कर करके वो 300 रुपए कमाती। 30वें दिन यानी हर महीने पर 300 रुपए वो सज्जन सिंह को देने पहुंच जाती। अब चारों ओर से उसकी शादी के पैगाम आने लगे, सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते, इतनी होनहार लड़की, इतनी होशियार और अच्छी शीलवान लड़की को सब अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, इसलिए उसके शादी के पैगाम यानी शादी के रिश्ते आने लगे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे, सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। सुभागी क्या कहती, अभी वह दिन नहीं आया मतलब अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था, आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। आखिरी किस्त यानी जो वो 300-300 रुपए देकर हर महीने सज्जन सिंह के खर्चे को उसे लौटा रही थी 3000 रुपए, वह जब उसने आखिरी किस्त पूरी की यानी आखिरी जो 300 रुपए दिया उसके बाद वो बहुत खुश थी, उसने जो इतनी कठिन तपस्या इतना व्रत ले रखा था पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो कहूं या ना कहूं मगर वचन दो कि मानोगी। जब वो जाने लगी रुपए देके आखिरी किस्त देके, तो सज्जन सिंह ने कहा कि तुमसे मेरी एक प्रार्थना यानी एक निवेदन करना चाहता हूं, तुम कहो तो कहूं वरना मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा तभी जब तुम वचन दोगी यानी मुझसे प्रॉमिस करोगी कि वो बात तुम मानोगी। तो सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सुभागी ने क्या कहा, आपकी बात तो मैं जरूर मानूंगी, आप तो मेरे पिता के समान है, बताइए क्या बात है। सज्जन सिंह ने कहा, मैंने अब तक तुमसे इसीलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी, अब रुपए चुका दिए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बोलो कहूं। उसने कहा, अगर मैं अभी तक तुमसे वो बात कहता तो तुम सोचती कि मैंने तुम पे एहसान किया, इसके बदले में ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन अब तो तुमने रुपए चुका दिए, मेरा कोई एहसान नहीं रहा, तो अब मैं तुमसे वो बात कहता हूँ। तो सज्जन क्या कहता है, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं तो तुम्हें अपना मुंह फिर कभी ना दिखाऊंगा। सुभागी बोली, क्या आज्ञा है, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए। सज्जन ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो, मैं जात पात में विश्वास करता हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए, मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह ने कहा क्या, जैसे जो हमारे गांव में जाति व्यवस्था है ना, ऊंची जात नीची जात इस सबको वो भी मानते थे, लेकिन जब उन्होंने सुभागी के कर्म देखे कि लड़की इतनी अच्छी है, तो उन्होंने ये सब जात पात ये सब भुला दिया और कहने लगे कि तुम मेरे घर की बहू यानी मेरे बेटे से शादी कर लो। और कहने लगे तुमने मेरी बेटे को भी देखा है, अगर मंजूर हो तो बताओ। सुभागी बोली इतना सामान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी, मतलब इतना आदर मैं कैसे सह पाऊंगी, मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ, नादान सी, कैसे सम्मान सहूंगी। तो सज्जन सिंह ने कहा कि तुम्हारा सम्मान तो भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो, कि तुम्हारा सम्मान मैं भला एक तुच्छ इंसान क्या करूंगा, स्वयं भगवान आपका सम्मान कर रहे हैं, तुम भगवती का अवतार यानी देवी माँ, भगवती हम दुर्गा देवी को भी कहते हैं, तुम देवी का अवतार हो। सुभागी मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। सुभागी ने कहा आप मेरे पिता समान हैं, आपकी जो मर्जी होगी उसको मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए आप जैसा चाहें कर सकते हैं। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। मतलब वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे हमेशा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया, मतलब कि उनका सज्जन सिंह का बेटा और सुभागी दोनों साथ में शादी कर लें और खुशी से रहें, और उन्होंने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा। तो ये थी प्रेमचंद की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुभागी। आइए अब जरा शब्दार्थ देख लें, यानी कठिन शब्दों के सरल अर्थ। गोदान मैंने आपको कहानी के दौरान बताया, गाय का दान। सुहाग यानी सौभाग्य, नारी का जो पति के साथ रिश्ता होता है उसे हम सौभाग्य मानते हैं, सुहाग कहते हैं। विनीत यानी विनम्र, विनीत भाव से यानी बहुत ही विनम्र भाव से, पोलाइटनेस इंग्लिश में कहते हैं। मिजाज यानी तबीयत या स्वभाव, आपका मिजाज कैसा है ऐसे पूछते हैं ना, मतलब आपकी तबीयत कैसी है। नागा, नागा यानी अंतर होना, जैसे वो एक पंक्ति आई थी कहानी में कोई दिन नागा नहीं गया, मतलब किसी दिन में अंतर नहीं आया। निवाला यानी कौर, जब हम खाना खाते हैं तो जो एक कौर होता है एक बाइट होता है वो निवाला कहलाता है या कौर। व्रत यानी प्रण, किसी चीज का प्रण कर लेना, प्रतिज्ञा कर लेना कि मुझे ऐसा काम पूरा करना है। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार जो दाह संस्कार होता है। उजड यानी गवार और बेलगाम, अवारा टाइप जिसे हम कह सकते हैं। अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे यानी अभ्यासकार। तो पहला प्रश्न है तुलसी महतो के कितने बच्चे थे, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे। तुलसी महतो के दो बच्चे थे, एक बड़ा बेटा रामू जो कि बहुत उजड था और एक छोटी बेटी सुभागी जो कि बहुत समझदार थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है तुलसी महतो अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार करते थे क्यों। तुलसी महतो ये कहानी की शुरुआत में दिया है कि अपनी बेटी सुभागी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि सुभागी जो थी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की, घर के कार्यों में भी निपुण थी और खेतीबाड़ी के कार्य में भी निपुण थी और हर काम को बहुत होशियारी और समझदारी से करती थी। तुलसी महतो ने गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया था। तुलसी महतो ने गांव वालों को इकट्ठा इसीलिए किया था क्योंकि वह अपने बेटे रामू के साथ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि रामू जो था वो उनकी बेटी सुभागी को हमेशा कुछ बुरा भला कहता रहता था, इसलिए वो अब बंटवारा चाहते थे। तो एक पंचायत बुलाई तुलसी महतो ने जिससे रामू और उनका बंटवारा हो सके। सज्जन सिंह ने सुभागी को अपनी पुत्र वधू के रूप में क्यों चुना, ये कहानी के अंतिम चरण में हमने पढ़ा। जो सज्जन सिंह थे गांव के मुखिया वो ऊंची जाति के थे, सुभागी उतनी ऊंची जाति की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जात पात का बंधन तोड़ दिया, जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सुभागी के कर्मों को देखकर वो इतनी होशियार और सुशील थी, इसीलिए उन्होंने उसे पुत्रवधू यानी अपने बेटे की पत्नी के रूप में चुना था। ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। आइए अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे हिंदी में कहा जाता है, यानी एक प्रश्न के चार उत्तर आपको मिलेंगे जिसमें से आपको सही उत्तर चुनना होगा। पहला प्रश्न है सुभागी ने संभाल रखा था, सुभागी ने क्या क्या संभाल रखा था, चार उत्तर है। पहला है क व्यापार का सारा काम, ख घर का सारा काम, ग समाज का सारा काम और घ गांव का सारा काम। तो इसका सही उत्तर होगा ख दूसरा वाला यानी ख घर का सारा काम। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ख होगा सही उत्तर, घर का सारा काम। दूसरा प्रश्न देखिए, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे, यह कहा, यह जो पंक्ति दी है ये किसने कही है, ये पूछ रहे हैं। बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे, क तुलसी ने, ख रामू ने, ग सज्जन सिंह ने, घ सुभागी ने। इसका उत्तर भी होगा ख दूसरा वाला, रामू ने। यह किसने कहा था, रामू ने अपनी बहन सुभागी से कहा था। तीसरा प्रश्न है गांव के मुखिया सज्जन सिंह पुरुष थे, कैसे पुरुष थे, क कठोर, ख सज्जन, ग धनवान और घ अखड़। इसका उत्तर भी ख है दूसरा वाला सज्जन, सज्जन सिंह सज्जन पुरुष थे, तो आप खा पे सही का निशान लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखकर सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको 5 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको कौन सा सही है और कौन सा गलत है वह बताना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। पहला वाक्य है, रामू ने घर का सारा कामकाज संभाल रखा था। यह होगा गलत। रामू ने घर का सारा कामकाज संभाल रखा था, ये है गलत, क्योंकि सारा कामकाज सुभागी ने संभाला था। रामू ने कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह सही है, दूसरे वाले पे आप सही का निशान लगाएंगे क्योंकि रामू ने ही ऐसा कहा था। तीसरा वाक्य है, तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। यह भी बिल्कुल सही है, तुलसी ने ऐसा कहा था, तो आप इस पे भी सही का निशान लगाएंगे। चौथा वाक्य पढ़ती हूँ, लक्ष्मी ने कहा, अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। यह भी बिल्कुल सही है, जब लक्ष्मी का अंतिम समय था तो उसने कहा था कि अगले जन्म में भी सुभागी तुम ही मेरी कोख से जन्म लो। पांचवा और अंतिम वाक्य पढ़ती हूँ मैं, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सुभागी ने कहा, इतना सम्मान अगर आप मुझे देंगे सज्जन सिंह से तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये भी सही है, यानी पहला गलत बाकी चारों सही है। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सुभागी ने घर का क्या क्या काम संभाल रखा था। सुभागी ने घर के सारे काम संभाल रखे थे, जैसे वह चूल्हा चौका करती थी, आटा पीसती थी, माता पिता की सेवा करती थी, इसके अलावा वह खेती बाड़ी का काम भी करती थी। फिर से आपको उत्तर बताती हूँ, सुभागी ने घर का सारा काम संभाल रखा था, जैसे वह चौका यानी कि रसोई का काम, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, माता पिता की सेवा और इसके साथ खेती बाड़ी का काम भी करती थी। दूसरा प्रश्न है, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, यह किसने और क्यों कहा। यह पंक्ति तुलसी महतो ने कही थी कि लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, क्यों, क्योंकि ऐसे लड़के से जो हमारे कुल को बदनाम करे, घर तोड़ने पे तुला हो, ऐसा पापी इंसान हो, उजड़ हो, आवारा हो, उससे अच्छी तो बेटी है जो कुल को तार रही है, हमें अपने बूढ़े माँ बाप को संभाल रही है और घर को भी संभाल रही है। इसलिए लड़का लड़की में अंतर करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे आवारा लड़के से तो मेरी समझदार बेटी ही अच्छी है। अब हम आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न पे, रत्न कितना कठोर निकला और ये दंड कितना मंगलमय, तुलसी ने ऐसा क्यों सोचा। क्योंकि उस समय लड़का और लड़की के बीच अंतर किया जाता था, तो वही मानसिकता तुलसी की भी रही होगी जब उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। जब उसका बेटा हुआ था तो वो बहुत खुश हुआ था, उसने उत्सव मनाया था, और जब उसकी बेटी सुभागी हुई थी तो वह बहुत दुखी हुआ था, उसने कोई उत्सव नहीं मनाया था। तो उसने यही कहा कि जिसके होने पे मैं खुश हुआ था, जिसको मैंने अपना रत्न समझा था, वो तो बहुत कठोर निकला, मतलब वो तो किसी काम का ही नहीं निकला, लेकिन जिसे मैंने दंड समझा, मैंने समझा था बेटी हुई है, मतलब पूर्व जन्म के मुझे कुछ सजा मिल रही है, वो सजा कितनी मंगलमय यानी कितनी अच्छी निकली, बेटी तो मेरी इतनी सेवा कर रही है, यानी जिसको मैंने अच्छा समझा वो बुरा निकला, जिसको बुरा समझा वो अच्छा निकला। दूसरा प्रश्न है, तुलसी महतो ने अंतिम समय सज्जन सिंह से क्या बात कही। तुलसी महतो ने अंतिम समय में सज्जन सिंह से यही बात कही कि मुझे कुछ नहीं कहना, अब मैं विदा लेता हूँ, और आप मेरी बेटी सुभागी की रक्षा करना, आप उसके पिता की तरह रहना, मतलब अब उसका दुनिया में कोई सहारा नहीं रह जाएगा, तो आप उसके पिता बनकर रहना और वो जो जो चाहे उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना। और रामू का मुंह देखने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि रामू जो था वह बहुत ही पापी और आवारा किस्म का लड़का था। ये हुआ दूसरा प्रश्न। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मी ने अंतिम समय सुभागी को क्या आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जो कि सुभागी की माँ थी, जब उनके मृत्यु का समय आया तो उसने सुभागी को यह आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो और मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी जैसी ही बेटी चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ, अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से जन्म लो, मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी जैसी ही बेटी चाहती हूँ, भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में। पहला प्रश्न है, सुभागी के जीवन का कठोर व्रत क्या था और उसने उसे कैसे पूरा किया। जब तुलसी महतो इस दुनिया से अलविदा हो गए, तब उनकी 13वीं में और उनके अंतिम क्रिया में जो खर्चा हुआ था वह लगभग 3,000 था। और उसके बाद जब तुलसी महतो की पत्नी लक्ष्मी भी इस दुख में कि मेरा पति मर गया है दुनिया से चली गई, तो सुभागी के जीवन का केवल एक यही लक्ष्य रह गया था कि उसे, जो उसने सज्जन सिंह से पैसे लिए हैं अपने माता पिता के अंतिम क्रिया करने में, वो उसे लौटाने हैं। इसलिए वह दिन रात मेहनत करती थी, दिन में खेती बाड़ी का काम करती थी, रात में आटा पीसती थी, और हर महीने 300 रुपए की किश्त देकर धीरे धीरे उसने अपना ये कठोर व्रत यानी अपनी प्रतिज्ञा जो थी वो पूर्ण की और सज्जन सिंह को उसके सारे पैसे चुका दिए। कहानी सुभागी का सार अपनी भाषा में लिखिए। यह जो कहानी है सुभागी, इसका सार आपको अपनी भाषा में लिखना है। ये आपका असाइनमेंट है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। सुभागी कहानी में जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने दिखाया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, इंसान अच्छा हो यह जरूरी है। सुभागी जो थी वो एक लड़की थी जिसके होने पर किसी ने उत्सव नहीं मनाया था, लेकिन आगे चलकर उसी ने अपने माँ बाप की सेवा करी, उनकी अंतिम क्रिया की। जबकि बेटा, जिसके लिए सब खुश हुए थे, उसने उनसे अलग रहना मंजूर किया। और सुभागी के कर्मों को देखकर जो गांव के मुखिया थे वो जाति व्यवस्था से ऊपर उठ गए और उन्होंने जात पात का भेद छोड़कर अपने बेटे की शादी सुभागी से करने की सोची। ठीक है, इसे और अच्छे तरीके से आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अब आते हैं भाषा की बात यानी कि व्याकरण पर। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देख लोग दांतों तले उंगली दबाते थे, रेखांकित वाक्यांश एक मुहावरा है जिसका अर्थ आश्चर्य करना है। ये मैंने आपको कहानी बताते समय बताया था ना कि दांतों तले उंगली चबाना यानी आश्चर्यचकित होना। आप भी निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आपको चार यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला है लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा आना या क्रोध करना। तो आप इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? रोहन की गलतियों पर मास्टर जी लाल पीले हो गए। रोहन की गलतियों को देखकर मास्टर जी लाल पीले हो गए यानी कि उन्हें बहुत क्रोध आ गया। अगला है 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। मेरी मौसी के घर रात चोर आए और सारा सामान लेकर 9-2-11 हो गए। यह इसका वाक्य है। तीसरा मुहावरा है दुख की सीमा ना रहना यानी अनंत दुख होना, बहुत ज्यादा दुख होना, बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाना। तो आप क्या लिखेंगे? रमेश की नौकरी चले जाने से उसके परिवार की दुख की सीमा ना रही। ठीक है। चौथा मुहावरा अपने मुंह मियां मिट्ठू होना यानी अपनी स्वयं तारीफ करना। तो आप क्या लिखोगे? नेहा तो पूरे दिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहती है यानी पूरे दिन अपनी तारीफ करती रहती है। ये पहला प्रश्न हो गया आपका भाषा की बात का। दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यह आपको एक गद्यांश दिया है यानी गद्य का अंश पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तुलसी देख लिया आप लोगों ने, इसका मिजाज भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। तो आप क्या करेंगे? तुलसी के बाद लगाएंगे एक डैश यानी, क्योंकि ये तुलसी ये बात कह रहे हैं तो छोटा सा आप डैश लगाएंगे। देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, यहाँ पे मिजाज के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे, पूर्ण विराम लगाएंगे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाएंगे। और तुलसी के बाद जो आपने डैश दिया उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे शुरू के, और कुलवंती हो गया पूर्ण विराम लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे। पाठ से आगे। तुलसी महतो और लक्ष्मी अगर सुभागी को घर से अलग कर देते तो क्या होता? ये आपकी विचार शक्ति को जानने के लिए प्रश्न किया गया है कि अगर तुलसी महतो और लक्ष्मी यानी उस सुभागी के जो माता पिता हैं उन्होंने उसे घर से अलग कर दिया होता तो क्या होता। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? क्योंकि सुभागी जो है वो बहुत ही समझदार, होशियार और मेहनती लड़की थी, इसलिए वह अपना जीवन निर्वाह कैसे ना कैसे कर लेती। हालांकि उसे थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन फिर भी वह इतनी मेहनती थी कि अपने बल पर अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकती है। और वो इतनी सशक्त थी और इतनी लोग उसकी तारीफ करते थे कि उसे कोई अच्छा घर भी अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाता, जैसे कि गांव के मुखिया ही तैयार हो गए आखिर में। अगला प्रश्न है, अगर सुभागी अपने माता पिता की सेवा ना करती तो उसके माता पिता का जीवन कैसा होता? अगर सुभागी अपने माता पिता की सेवा ना करती तो उनका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता। क्योंकि सुभागी भी उन्हें छोड़ देती और उनका बेटा जो बड़ा बेटा था रामू वो तो वैसे ही किसी काम का नहीं था, उजड़ आवारा टाइप का लड़का था ना, तो वो भी उनकी सेवा नहीं करता, सुभागी भी सेवा नहीं करती, तो बूढ़े माँ बाप का जीवन बहुत कठिन हो जाता। जो उनकी मृत्यु बुखार से इतने दिनों बाद हुई वो काफी पहले ही हो चुकी होती और उनका बुढ़ापा बहुत कठिनाई से बीतता। अब आते हैं हम चर्चा करें, परिश्रम सफलता की कुंजी है, कैसे आपस में चर्चा कीजिए। इस वाक्य का अर्थ है कि परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। कहानी का अगर उदाहरण दूं तो सुभागी को अपने हर कार्य में सफलता इसीलिए मिलती थी क्योंकि वह बहुत ही मेहनती लड़की थी। इसीलिए अगर आपको सफलता पानी है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको भी परिश्रम करना होगा। मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है। हमारे समाज में ऐसी अनेक कुरीतियां हैं, उनकी सूची बनाकर एक एक कुरीति पर एक एक विद्यार्थी कक्षा में अपने विचार प्रकट करे। यह आप लोग आपस में, एक आपके लिए असाइनमेंट हो सकता है, आप करेंगे। जैसे मृत्यु भोज एक कुरीति है, सामाजिक कुरीति, क्योंकि एक तो इंसान मर गया है, आपको उसके लिए इतना शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, फिर भी आप लोगों को खाना खिला रहे हैं और इतना खर्चा कर रहे हैं, यह क्या है? ऐसी कई कुरीतियां हैं जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, या फिर लड़का लड़की भेद, जाति व्यवस्था, सबसे बड़ी जो कि हमारी सामाजिक कुरीति खत्म नहीं हो पा रही है, जाति व्यवस्था। ऐसी कुछ सामाजिक कुरीतियां लेकर आप सबसे मैं चाहूंगी कि अपने अपने विचार व्यक्त करें आपस में। तीसरा है, हमारे समाज में अनेक अच्छी प्रथाएं हैं जैसे संयुक्त परिवार प्रथा आदि, ऐसी अच्छी प्रथाओं पर चर्चा कीजिए। जहां सामाजिक कुरीतियां हैं वहां कुछ अच्छी प्रथाएं भी हैं, जैसे कि हमारे समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा है कि सारे लोग एक परिवार के एक साथ मिलकर रह रहे हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बच्चे सब एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसे में आपके अंदर अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। ऐसे जितनी भी अच्छी प्रथाएं हैं आपस में उनकी चर्चा करें, यह भी करें। रचनात्मक कार्य क्या दिया है? सज्जन सिंह व सुभागी के संवाद को आधार बनाकर बाल सभा में मंचन कीजिए। मतलब आपको एक तरह से एक नाटक करना है, जो मंच पे नाटक खेले जाते हैं ना, वैसे एक बच्चा जो है वो सज्जन सिंह बनेगा और एक छात्रा जो है वो सुभागी का रोल निभाएगी, और आपस में जो उनके संवाद यानी उनके बीच में जो बातचीत हुई है वो आपको करना है। ये बहुत ही रोचक कार्य है, इसे करके देखिए। दो दो तीन दिन के ग्रुप में बंट जाइए और एक सज्जन सिंह का रोल निभाए, एक सुभागी का, और उनकी बातों को आप करें कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या कहा। ठीक है, जाने गुने और जीवन में उतारे, ये आखिर में एक विचार दिया हुआ है। कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर चुके होते हैं, किंतु वीर पुरुष जीवन में एक ही बार मरते हैं। कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा, जो डर गया वो मर गया। मतलब जो कायरता होती है, जो डर होता है, वो मृत्यु के समान होती है। जो वीर बहादुरी से जो लोग रहते हैं वो सिर्फ तभी मरते हैं जब उनकी मृत्यु आती है, लेकिन कायर इंसान जब जब डरता है तब तब मरता है, इसलिए उसकी मृत्यु कई बार होती है। तो यहाँ पे आपका पार्ट दो सुभागी खत्म होता है। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।